लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ।
हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ,
भय वह मनोभावना है जो हर मानव के जीवन में व्याप्त है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर सदैव भयभीत रहते हैं। इस तरह जीवन में भय से ग्रसित होने के कई कारण हो सकते हैं। हमें भय लगता है अपनी मौत का, अपने प्रिय जनों को खोने का। हम भयभीत होते हैं अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों में कोई गलती करने का, जो हमारे लिए बदनामी, बेइज्जती और जग हंसाई का कारण बनती है। हम भयभीत रहते हैं मानव समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का। हमें डर लगता है अपने जीवन में असफल होने का। इस भांति यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम कई तरह के भयों से अपने को घिरा हुआ पाते, जो सही अर्थ में हमें अपने जीवन को जीने नहीं देती है। मानव के रूप में हम सभी डर के गुलाम हैं, जो हमें स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत करने नहीं देता है। श्रोताओ, कलिसियाई पूजन विधि वार्षिक काल चक्र का 22वां सामान्य सप्ताह आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें इस भय की चर्चा करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों को सुनते हुए अपने आप से पूछें कि हमारे जीवन में वह कौन सा भय है जिसके कारण हम सही रूप में अपने जीवन को जीने में असक्षम होते हैं। वे कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम भयभीत हो जाते और स्वयं अपनी सच्ची स्वतंत्रता का गला घोंटते हुए अपने में संकुचित और दब्बू बनकर रह जाते हैं।
इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
श्रोताओ, प्रभु वचन जो हमारे लिए सच्चे जीवन का आधार है, हमें अपने जीवन में व्याप्त भय से मुक्त होने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन को सच्ची स्वतंत्रता में प्रभु के लिए जी सकें, जो हमें निर्भय होकर स्वतंत्रता में संपूर्ण जीवन जीने का आह्वान करते हैं।
मेरे दिल में तेरा प्यार।
श्रोताओ, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारा ध्यान दुनिया में व्याप्त बुराइयों की ओर आकृष्ट कराता है। नबी ईश्वर की ओर से भेजा गया एक व्यक्ति है जो ईश्वर की सत्य बातों को घोषित करता है। नबी यिर्मयाह ईश्वर के द्वारा अपने भेजे जाने पर खरा उतरती और ईश्वर के सत्य वचनों को घोषित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है कि कैसे उसे दोषी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें प्राण दंड देकर रास्ते से हटाया जा सके। श्रोताओ, दुनिया की यही रीत है, जो सत्यवादी और ईमानदारी की राह पर चलता उसे दुष्टों के कोप भजन का शिकार होना पड़ता है। स्वयं यीशु ख्रिस्त को सत्य के मार्ग में चलने और समाज के नेताओं को चुनौती देने का खमियाजा भुगतना पड़ा। उन पर झूठा दोष लगाया गया और अंततः उन्हें क्रूरतम मौत का शिकार होना पड़ा। श्रोताओ, आज पहला पाठ का दूसरा भाग हमारे लिए नबी यिर्मयाह का ईश्वर पर अटूट विश्वास की बात कहता है। ईश्वर की सत्यवाणी को घोषित करते हुए वे अपने को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि जिनके कार्यों को वे करते हैं वे ही उनकी देख रेख करेंगे और उन्हें उनके शत्रुओं से बचाएंगे। वहीं आज का दूसरा पाठ दुनिया में एक मनुष्य द्वारा पाप के प्रवेश होने की बात कहता है। धर्म ग्रंथ बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हमारे लिए पापों के प्रसार का एक हवाला प्रस्तुत करता है। आदम के आज्ञा भंग के कारण दुनिया में पापों का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक बुराई ने दूसरी बुराई को जन्म दिया और इस भांति मानव के पाप कर्म एक के बाद एक बढ़ते गए। सृष्टि के प्रथम पुरुष आदम ने अपने को ईश्वर से बड़ा होने की सोच रखी। उसके घमंड और अहंकार ने उसे ईश्वर की संहिता का विरोधी बना दिया। उसने सत्य अर्थात ईश्वर को अस्वीकार करते हुए झूठी प्रशंसा और अपनी व्यक्तिगत महिमा की चाह रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह ईश्वरीय कृपा की दशा से गिर गया। उसने पाप किया और इस पाप की सजा मृत्यु मिली। श्रोताओ, आज के सुसमाचार पाठ का संदर्भ हमारे लिए पुनः आदि पुरखों की तरह ईश्वर को अपनी निर्भीकता में स्वीकार करने का आह्वान करता है, जो हमारे लिए ईश्वर की सत्य शिक्षा उनके द्वारा बतलाए गए जीवन के मार्ग में चलना है। पिता ईश्वर ने अपने अद्वितीय प्रेम में मानव प्राणी की सृष्टि इसलिए की थी कि वह अपने सृजनहार ईश्वर को जाने, उसे अपने जीवन का मालिक समझे, उसे प्रेम करे तथा अपनी सारी शक्ति मन दिल और आत्मा से उसकी सेवा पूजा करे। लेकिन मानव इस सत्य से भटककर स्वयं अपने आप को जीवन का मालिक समझ बैठा। आज मानव ने ईश्वर प्रदत्त अपनी बुद्धि और क्षमताओं का विकास कर अपने को सृष्टि का सिरमौर मान लिया है और इस तरह हम अपने को ईश्वर से दूर पाते हैं, जैसे कि आदम ने सृष्टि के प्रारंभ में किया। श्रोताओ, सुसमाचार में ईश वचन हमें नहीं डरने को कहते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो हमारे शरीर को मार डालते हैं लेकिन हमारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। इसका संदर्भ हमारे लिए यही है कि मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त हमें अपनी शिक्षा को, जिससे उन्होंने पिता की ओर से हमारे लिए इस दुनिया में लाया, निर्भय होकर घोषित करने को कहते हैं। ख्रिस्त ने जिन बातों को स्वयं अपने जीवन में जीते हुए हमें उदाहरण दिया, उन्हीं बातों का साक्ष्य देने हेतु वे हम सबों का आह्वान करते हैं। सत्य की बातें हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसकी उद्घोषणा हमें दुनिया की नजरों में शत्रु बनाती है। इस बात के संदर्भ में यीशु हमें कहते हैं कि यदि उन्होंने घर के स्वामी को बेलजबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। लेकिन यीशु हमें नहीं डरने को कहते हैं क्योंकि वे सदा हमारे साथ रहते हैं। श्रोताओ, हमें अपने जीवन में डर भय और शंका इसलिए होती है क्योंकि हम यीशु ख्रिस्त के संग अपने संबंध को मजबूत नहीं पाते हैं। वहीं यदि हम संतों और शहीदों के जीवन पर चिंतन करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने विश्वास के कारण अपने जीवन को पूर्ण रूपेण यीशु ख्रिस्त में समर्पित कर दिया, जिसके कारण वे घोर सतावट और मृत्यु के आगे भी नहीं झुके। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे को जानने और समझने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम उनके प्रेरित कार्य में फलहित हो सकें, जिसके लिए उन्होंने हम सबों को यह जीवन दिया है।
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर शरणार्थी दिवस की याद की तथा शरणार्थियों के चेहरे पर ख्रिस्त को देखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे भी हेरोद के समय में विस्थापित हुए थे। संत पापा ने संदेश में लिखा, यीशु सुरक्षा की खोज में पलायन करने वाले हर एक व्यक्ति में उपस्थित हैं, जैसा कि वे हेरोद के समय में थे। उनके चेहरे पर हम ख्रिस्त के चेहरे को देखने के लिए बुलाए गए हैं, जो हमसे मदद की मांग करते हैं। अंत में हम ही उन्हें प्रेम और सेवा कर पाने के लिए धन्यवाद देंगे। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने सभी डॉक्टरों और नर्सों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने संदेश में लिखा है, प्यारे डॉक्टरों एवं नर्सों, दुनिया ने देखा कि आपने एक अत्यंत कठिन परिस्थिति में बहुत अच्छा काम किया। उस समय में भी जब आप थक चुके थे, आपने लगातार अपनी क्षमता एवं आत्म त्याग के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया। यह आशा जगाता है। आपको मेरा सम्मान एवं ईमानदारी से धन्यवाद। कारितास इंटरनेशनल ने विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर एक संदेश प्रकाशित किया है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इस बात पर जोर देते हुए कि शरणार्थी हमारे अन्यायपूर्ण तंत्र के शिकार हैं, कैथोलिक कारितास का वैश्विक महासंघ ने विश्व के राजनीतिक नेताओं से अपील की है कि शरणार्थियों को सम्मानित और सुरक्षित तरीके से अपनाया जाए, उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षित जीने की परिस्थिति प्रदान की जाए, विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय में। संदेश में कहा गया है कि हम हमारे राजनीतिक नेताओं से अपील करते हैं कि वे शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए साहसिक कदम उठाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो कई स्थलों में विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के मद्देनजर जारी संदेश में कारितास इंटरनेशनल के महासचिव अलोइसिस जोन का कहना है कि शरणार्थी प्रतिष्ठा, मूल्यों और अधिकार के साथ मानव व्यक्ति हैं, तथा यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम उन्हें खुली बाहों से अपनाएं एवं यह सुनिश्चित करें कि वे भी सम्मान की जिंदगी जी सकें। संत पापा फ्रांसिस ने इक्वाडोर को कोरोना वायरस महामारी का सामना करने का प्रोत्साहन देते हुए 2 वेंटिलेटर दान किया। संत पापा द्वारा वेंटिलेटर दान करने की घोषणा देश के धर्माध्यक्ष सम्मेलन की वेबसाइट पर जारी की गई है।
पुरोहितों के पौत्रकरण के लिए वार्षिक वैश्विक रोजरी रिले 19 जून को यीशु के पौत्र हृदय महापद के अवसर पर किया जाता है। इस साल भी प्रतिभागी रोजरी प्रार्थना के लिए निमंत्रित किए गए थे। 19 जून को यीशु के पौत्र हृदय महापद के उपलक्ष्य में विश्व भर के लोगों ने वार्षिक वैश्विक रोजरी रिले में भाग लिया। वैश्विक रोजरी रिले विश्व पुरोहित ग्लोबल प्रेरिताय की एक पहल है, जिसकी स्थापना मरियन मुलहल ने विश्व भर के पुरोहितों को प्रार्थना द्वारा समर्थन देने के उद्देश्य से की है। इस साल की रोजरी रिले को संत पापा फ्रांसिस के लिए अर्पित किया गया।
संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 19 जून को धन्य घोषणा के लिए परम धर्म पीठीय संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल आंजेलो बेचू द्वारा प्रस्तुत आज्ञाप्तियों को स्वीकार कर एक शहीद और चार प्रभु सेवकों की धन्य घोषणा को अनुमोदन प्रदान किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना के माइनर फ्रायर्स धर्म संघ के सदस्य कोरबोडा, अर्जेंटीना के महाधर्माध्यक्ष प्रभु सेवक मामेरोती एसेक्वी, जर्मनी के ईस सेवक फ्रांसिस्कुस मरिया क्रॉस, सोसाइटी ऑफ द डिवाइन सेवियर साल्वोटेरियन के संस्थापक और दिव्य उद्धारकर्ता की धर्म बहनों के संस्थापक, वेनेजुएला के ईस सेवक जोस ग्रेगोरियो हेर्नांडेस सिसनोस, इटली की प्रभु सेविका मारिया लारा मेनेंटी, क्रूस की पुत्रियों के धर्म संघ, संत एंड्रूज की धर्म बहनों के समुदाय की धर्म बहन, और मेक्सिको की ईश सेविका येसु एलिंगो ग्रासिया के देव ग्लोरिया मारिया, मिशनरी कैटेकिस्ट ऑफ द पुअर धर्म संघ की मदर जनरल। इनके वीरोचित गुणों को स्वीकार कर संत पापा फ्रांसिस ने इनकी धन्य घोषणा को भी अनुमोदन दे दिया है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। पूरे विश्व में इस दिन को शरणार्थियों की समस्याओं को उजागर करने के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के शरणार्थी समिति के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मारियो ने कहा, पहले से कहीं ज्यादा इस समय हमें अपने शरणार्थी भाइयों और बहनों की रक्षा करने और उनका साथ देने की आवश्यकता है। बहुत से संवेदनशील लोग हैं जो वर्तमान में उत्पीड़न से बचने में असमर्थ हैं और जो भयानक परिस्थितियों में रहते हैं। धर्माध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी द्वारा बढ़ाए गए संकट को रेखांकित करते हुए कहा, इस समय दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 70 मिलियन से अधिक विस्थापित लोगों के साथ 25 मिलियन शरणार्थियों सहित प्रवासन संकट का सामना कर रही है। उधर कोरोना वायरस महामारी के इस संकट की घड़ी में झारखंड की कैथोलिक कलीसिया विभिन्न तरीकों से जरूरतमंदों की सहायता करती आ रही है। रांची महाधर्म प्रांत के सचिव फादर सुशील टोप्पो ने बताया कि शुक्रवार 19 जून को ख्रीस्त के पवित्र हृदय के पर्व के दिन रांची महाधर्म प्रांत की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया गया। रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो के नेतृत्व में रांची के डोम कोचा बस्ती में हरिजन परिवारों के बीच, कडरू के काफूर बस्ती में जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के बीच तथा मुरहू में जरूरतमंद आदिवासियों के बीच करीब 530 परिवारों की मदद करते हुए मानवीय प्रेम का ठोस रूप प्रकट किया गया। यह उदार कार्य महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो और सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनहास की अगुवाई में किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा। रांची महाधर्म प्रांतीय युवा संघ के कुछ सदस्य, सेमिनरी के धर्म बंधुओं और स्थानीय प्रतिनिधि युवा भाइयों और बहनों के सहयोग से सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए राशन का वितरण किया गया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।